Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो ये उस आकाश से बड़ा कैसे है, तो आप नहीं समझ रहे इस बात को। ये जो आकाश है ये तो भूताकाश है, पंचमहाभूत के द्वारा पैदा हुआ आकाश है। और आपके हृदय में जो आकाश है ये भूताकाश नहीं है। जिसको वेदांत ने हर उपनिषदों ने दहराकाश कहा है और जिसको उपनिषद ने चित्ताकाश कहा है, वो जो दहराकाश है, वो जो चित्ताकाश है, वह भूताकाश नहीं है, वह अध्यात्म आकाश है। और अध्यात्म आकाश भूताकाश से बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। आपको कठिनाई जरूर होगी क्योंकि आप उपाधि के द्वारा देखना चाहोगे उस आकाश को, तब आपको कठिनाई होगी। उस आकाश के स्वरूप को, आपके शरीर के अंदर के जो आकाश है, चित्त आकाश या दहराकाश, उसके स्वरूप को चित्तक की उपाधि से देखने की कोशिश नहीं करना, और उपाधि के द्वारा देखने की कोशिश करोगे तब फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि चित्ताकाश दहराकाश इस भूताकाश से बहुत बड़ा है। क्योंकि वह अध्यात्म आकाश है, वह चैतन्य आकाश है, यह तो जड़ाकाश है, वह कारण आकाश है, यह कार्य आकाश है। और जो कार्य आकाश होता है कारण आकाश से छोटा ही होता है, और जो कारण आकाश होता है वो कार्य आकाश से बड़ा होता है। कार्य हमेशा अपने कारण से बड़ा माने छोटा होता है, कारण हमेशा अपने कार्य से बड़ा होता है। ये बात फिर आपको भी समझ में नहीं आएगी। राष्ट्रपति का पिता राष्ट्रपति से बड़ा होता है कि छोटा होता है? होता है बड़ा। राष्ट्रपति को सभी नमस्कार करते हैं, उसके बाप को कोई नमस्कार नहीं करता है। तो इस बड़े छोटे का अर्थ ये नहीं समझ लेना है। किसी प्रोफेसर का बाप उस प्रोफेसर से बड़ा होता है कि छोटा होता है? वो क्या, प्रोफेसर को सब नमस्कार करते हैं, उसको कोई नमस्कार नहीं करता है। इस बड़े छोटे का अर्थ ये नहीं समझ लेना है। लोक में जिसको बड़ा और छोटा कहा जाता है, क्योंकि उस प्रोफेसर का कारण तो उसका बाप है। इस अर्थ में ये बड़ा छोटे की बात नहीं है। नित्य और अनित्यता को लेकर, व्यापक और परिच्छिन्नता को लेकर ये सब बड़े छोटे की बात कह रहे हैं। महाकाश समाप्त होने के बाद भी चित्ताकाश रहता है, भूताकाश समाप्त होने पर भी दहराकाश रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सब भूताकाश उस दहराकाश और चित्ताकाश में परिकल्पित हैं, और चित्ताकाश की कल्पना है, इसीलिए इससे बड़ा है। इस समझोगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे बड़ा या छोटा बात समझ में नहीं आएगा। तो सारे ऋग्वेद आदि कहां अवस्थित हैं, तो बोलते हैं परमे व्योमन। ब्रह्मसूत्र में बड़ा विचार किया गया इस बात को लेकर। ये जो व्योम पद आया हुआ है, सामान्य शब्दकोश के हिसाब से व्योम पद का अर्थ होता है आकाश। और क्या सारा ऋग्वेद आदि जे ही आकाश में रहते हैं क्या? हालांकि शब्द शास्त्रीय लोग ये मानते हैं और आज विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है, सारे शब्द आकाश में ही रहते हैं। शब्द गुणकम आकाशम, क्योंकि जो गुण है वो अपने आश्रय गुणी में सन्निहित रहते हैं, अपना आश्रय गुणी को छोड़कर गुण अन्यत्र नहीं रह सकते। आकाश गुणी है, शब्द गुण है। और यहां जिस वेद को कहा जा रहा है वह शब्दात्मक वेद को कहा जा रहा है, ऋचा पद के द्वारा वेद, वेद माने शब्दात्मक वेद। ये सारे शब्दात्मक वेद हैं, ध्वन्यात्मक वेद हैं, पदात्मक वेद हैं, ये सब कहां सन्निहित हैं? परम व्योमन, आकाश में सन्निहित हैं, अपने कारण रूप आकाश, अपने धर्मी रूप आकाश में सन्निहित हैं। ये बात भाषाविद भी इस बात को जानते हैं, शब्द को नित्य मानने वाले लोग इस बात को जानते हैं, शब्द को व्यापक मानने वाले लोग इस बात को जानते हैं। आप लोगों को भले ही कठिनाई आई हो इस बात को समझने में, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, यहां ब्रह्मसूत्र में विचार किया है कि ये जो व्योम पद आया है ये भूताकाश के लिए आया है कि किसी और आकाश के लिए आया है, तो पूर्व पक्ष ने कहा शब्द के कोश के अनुसार व्योम पद का अर्थ भूताकाश ही होता है, इसलिए यहां भूताकाश के बारे में ही आया है। तब उसका उत्तर शंकराचार्य ने दिया है, व्योम पद का अर्थ भूताकाश नहीं, यह ब्रह्माकाश है, इसको चिदाकाश कहा है। भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश, ये तीन आकाश की बात आती है। भूताकाश ये आकाश अंतरिक्ष, चित्ताकाश आपके चित्त के अंतर्गत अंदर के जो स्पेस है, अवकाश है, उसमें अभिव्यक्त हुआ हुआ जो चैतन्य है उसको चिदाकाश, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, वो चिराकाश के बारे में ही ये कहा गया है, उसी को कहा परमे व्योम। ये तो अपर व्योम है, वो पर व्योम है। जैसे अपर पानी और पर पानी, ये दो प्रकार के पानी आपको समझ में आई कि नहीं? अपर पानी माने पंजीकृत द्वारा तैयार हुआ हुआ जल, ये अपर जल है। पर जल माने रस तन्मात्रा के रूप में अवस्थित जो जल है वह पर जल है। बात समझ गए? जल और जल का कारण रस तन्मात्रा, तो जो जल का कारण रस तन्मात्रा है वह रस तन्मात्रा, वो जल इस जल से परे है, क्योंकि अपंचीकृत जल उस रसतन मात्रा को कहते हैं, पंचीकृत जल इस जल को कहते हैं। इसी तरह अपंचीकृत आकाश और पंचीकृत आकाश, अपंचीकृत आकाश को शब्द तन मात्रा कहते हैं, पंचीकृत आकाश को ये भूताकाश कहते हैं। इसीलिए भूताकाश से बड़ा, भूताकाश के बड़ा शब्द तन मात्रा अपंचीकृत, इस जल से बड़ा रस तन्मात्रा, और ये पृथ्वी से बड़ा गंध तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा इस दिखने वाले पृथ्वी से भी बड़ा है, परे है, क्योंकि वह गंध तन्मात्रा इसका कारण है और उस गंध तन्मात्रा का ये पृथ्वी कार्य है। कार्य हमेशा अवर होता है और कारण पर होता है, इसलिए यहां कहा परमे व्योमन, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु, जिसमें सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद, चारों वेद सन्निहित हैं। इसकी और दूसरी प्रक्रिया है, अथर्व वेद यजुर्वेद में सन्निहित है, यजुर्वेद सामवेद में सन्निहित है, सामवेद ऋग्वेद में सन्निहित है और ऋग्वेद गायत्री में सन्निहित है, गायत्री व्याहृति में सन्निहित है, व्याहृति और गायत्री ये सब ओमकार में सन्निहित है। ओमकार से सबसे पहले व्याहृतियां निकली, व्याहृतियों से फिर गायत्री निकली, गायत्रियों में से ऋग्वेद निकला, ऋग्वेद से सामवेद निकला, सामवेद से अथर्ववेद निकला और अथर्ववेद से यजुर्वेद निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे वेद उस अक्षरे, अक्षर शब्द का अर्थ होता है ओमकार। तो इससे सिद्ध हुआ कि नहीं, सारे वेद ओमकार में सन्निहित हैं। जैसे ये सारा बहुत बड़ा जो पेड़ है वटवृक्ष, वटवृक्ष बड़ा होता है कि उस वटवृक्ष का बीज बड़ा होता है, है? अब तो आपको समझ में आ गया ना, भूताकाश बड़ा है कि चित्ताकाश बड़ा है? अब तो समझ में आया, भूताकाश ये जो बाहर का आकाश है ये बड़ा है कि चित्ताकाश बड़ा है? अब समझ में आया ना, बट वृक्ष बड़ा है कि बट का बीज बड़ा है? वो कह रहे हैं बट वृक्ष बड़ा है, क्योंकि जो जिसको इतना विशाल बट वृक्ष देख रहे हो, भड़ूस के पास का कबीर भट या भड़ूस के पास का जो कबीर बट है उससे भी हजार गुना बड़ा बट वृक्ष कलकत्ते में पड़ा है बोटनिकल गार्डन में। हाँ, वो भी बट वृक्ष, एक ही बट पेड़ है लेकिन कई एकड़ जमीन में फैला हुआ है, वो एक ही पेड़, उससे शाखा निकला, वहां से फिर उसके जड़े निकली, जड़ फिर वह जमीन में गया, फिर उससे और शाखा निकली, उससे जड़े निकली, जड़ी जमीन में गया। देखने के लिए जाओगे तो सब बड़ वृक्ष एक बहुत विशाल गार्डन है, एक ही पेड़ है, उसके जड़ अलग अलग है, उस शाखा से जड़ निकला, जमीन में गया, फिर वो मूल कहाँ है आप खोज के पता है। जो मूल जड़ है, मूल जहां से शाखाएं निकली, वो मूल को आप पता नहीं लगा, मूल तो गायब हो गया है, वो जड़ ही जड़ में सारा वृक्ष खड़ा है। कलकत्ते का बोटनिकल गार्डन आप गए होंगे बहुत लोग। अब इतना बड़ा जो बोटनिकल गार्डन है वो बड़ा है कि उसका एक बीज बड़ा है? क्योंकि आप जो बोटनिकल गार्डन के रूप में विशाल वृक्ष को देख रहे हो, वह तो उस एक बीज के अंदर सन्निहित है। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गायत्री, व्याहृति, सावित्री जितने भी हैं, सब के सब उसी एक ओमकार में सन्निहित हैं। ओमकार उस वेदों के बीज की तरह है, वेद तो एक वृक्ष की तरह है, वेद वृक्ष शास्त्र में आया है, वेद वृक्ष। इसलिए तो शंकराचार्य जी ने कह दिया विवेक चूड़ामणि में, शब्द जालम महारण्यम, ये जो शब्दों के समूह से बना हुआ शास्त्र है ये तो एक विशाल जंगल है। चित्त भ्रमण कारणम, ये तो इस जंगल में यदि तुम्हारा चित्त मन लग गया तो फिर वहां से तुम्हारा चित्त निकलने वाला नहीं, वो तो वहीं भटकता रहेगा। एक पद मिल गया उसका अर्थ का अनुसंधान करते रह जाओगे, फिर दूसरा पद आएगा उसका अर्थ का अनुसंधान करने लग जाओगे। चित्त भ्रमण कारणम, अतः विद्वान को चाहिए कि शास्त्र और शब्द जंगल में न घुसे। शंकराचार्य जी कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम यारभूतम तदुपासनीयम इत्यादि शास्त्रों में कहा गया है। यस्मिन देवादि विश्व निषेधो, जिसमें सारे विश्वदेव भी उसी में सन्निहित हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि सन्निहित हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अधिदेव और अधिभूत उसी एक अक्षर में सन्निहित है। यस्मिन देवा, जिस अक्षर में देवा कीदृश विश्वे देवा, अधि निषेधु जिसमें अधि अच्छी तरह सन्निहित है, टिका हुआ है, आश्रित है, यह जो अज सोचति मुह्यमानः, जो शोक मग्न में डूबा हुआ जो अज है, वो अज जिस समय यस्तम वेदः, उस सबका आश्रय रूप जो परम व्योम परमात्मा है, जिसको ब्रह्म कहो, जिसको कूटस्थ कहो, यस्तम वेद, यस्तम न वेद, यस्तम वेद जो उसको जानता है, वह तो शोक सागर से निकल जाता है, और जो उस सबके आश्रय रूप परमात्मा यानी परम व्योम को नहीं जानता, यस्तम न वेद, ऐसे अज्ञानियों को स्वयं वेद कह रही है, स्वयं वेद कह रहे हैं, स्वयं श्रुति कह रही है, किम ऋचा करिष्यति, वेद के मंत्र उसकी क्या रक्षा कर पाएंगे, भला क्या कर पाएंगे, उसको कोई क्या कर पाएगा। कोई व्यक्ति यदि स्वयं भ्रांत में पड़ा हुआ हो, तो फिर उसकी भ्रांति को वो खुद हटाएगा, तभी समाधान होगा, दूसरे व्यक्ति कोई क्या कर पाएगा। बड़ा सुंदर दृष्टांत देते महात्मा लोग, कोई व्यक्ति था, वो अपने घर में दिन में कोई काम कर रहा था, तो काम करते करते एक मोटी सी जो रस्सी थी, वो किसी को बांध बूंद कर रहा होगा, वो रस्सी को काटा और एक टुकड़ा वहां जमीन में पड़ा हुआ था, उसको हटाने में वो भूल गया, हटा नहीं पाया, वो रस्सी के टुकड़े को हटाया नहीं, और सब चीज को तो हटा दिया, किसी कारण से वो रस्सी का टुकड़ा वहीं रह गया। अब वो चला गया बाहर दिन में, क्योंकि दिन भर खूब मेहनत किया था, जैसे कि लोग आजकल करते हैं कि दिन में खूब काम किया, थकान हो गई तो थोड़ी सी दारू पी लो तो ठीक हो जाता है, जैसे कि आजकल करते हैं कि नहीं है, सभी लोग यही करते हैं आजकल, तो प्राय करके मेहनत किया, परिश्रम हुआ, थोड़ा थकान हो गया, तो उसको थकान को दूर करने के थोड़ा दारू पी लो तो सब थकान चला जाता है। तो वो चला गया, वो भी दिन भर अपने घर में काम कर रहा था, शाम के समय में काम पूरा किया, थक गया था, और सब चीज को तो उसने हटा लिया अपने घर से, अपने कमरे से, कहीं से एक छोटा सा एक रस्सी का टुकड़ा वहीं रह गया था, और थक गया था तो दारू पीने चला गया होगा, पी लिया शाम के समय दारू भी, दारू पी पा के जब घर में आया तो मंदा अंधकार हो चुका था, है शाम का समय हो चुका था, गोधूली मंदा अंधकार का समय हो गया था, उसने जैसे ही दरवाजा खोली तो अंदर उसने सर्प देख लिया। देखेगा कि नहीं, दारू न पीने वालों को तो दिखाई पड़ता है, तो वो तो दारू भी पी चुका था, बोलो, सर्प देख लिया वो तो। अब वो तो बहुत डर गया, बहुत घबरा गया, अरे रे रे रे, मेरे कमरे में, मेरे घर में सर्प घुस आया, अब इसको निकालना पड़ेगा, जब तक ये नहीं निकलेगा मैं कमरे में नहीं जा सकता, सो नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा, वो तो बड़ा चिंतित तो हो गया। अब वो वहां खड़े खड़े पत्थर मार रहा है, लकड़ी मार रहा है, डंडे मार रहा है कि सर्प भाग जावे। पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं, आपकी परंपरा क्या है, ये शरीर जहां पैदा हुआ तो वहां की परंपरा, घर के अंदर कहीं सर्प घुस आ भी गया तो उसको निकालने का एक सरल उपाय है, उस सर्प के सुनने, वो सर्प सुने इस तरह जोर जोर से गरुड़ का नाम ले लो, ए गरुड़ आ जा, ए गरुड़ आ जा, कहो तो वो सर्प अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि गरुड़ और सर्प की दुश्मनी है। तो गरुड़ का नाम सुना कि सर्प भाग जाएगा, इसलिए गरुड़ का नाम लेते थे गांव में। हा? आप लोगों की परंपरा क्या है हम नहीं जानते, वहां तो घर में किसी के घर में किसी के सर्प घुस आ गया तो जोर जोर से सभी लोग जोर जोर से बोलते थे, गरुड़ गरुड़ आ जाओ, गरुड़ गरुड़, हे गरुड़। तो ये सब बोलते बोलते वो सब भाग जाता था। भाग तो गरुड़ के नाम से क्या भागता होगा, दो चार आदमी वहां खड़े हो गए, सर्प ने देखा अब मेरी यहां खैर नहीं है, वह भाग गया। वो गरुड़ के नाम सुनकर भागा होगा जैसा तो लगता नहीं है, मनुष्यों की भीड़ देखकर भाग गया होगा। चलो फिर भी वो मान्यता अपनी जगह है, क्योंकि गरुड़ की और सर्प की दुश्मनी है, ये हो सकता है। इसी तरह है। अब वो व्यक्ति बैठकर गरुड़ को भी पुकार रहा है, पत्थर भी मार रहा है, इससे भी नहीं गया तो उसने विचार किया जैसे कि पंडित लोग करते हैं। करते हैं कि नहीं, आपके घर में आने वाले आपके जो पंडित हैं, कोई पंडित हो तो नाराज नहीं होना, हो करते हैं। आप कहो कि महाराज हमको शनि की 7.5 ने दबा लिया है, 7.5 ने आके बैठ गया हमारे सिर में, 7.5 शनि का 7.5 ये आ गया, 7.5 ढैया क्या करें महाराज। तो पंडित जी कहते हैं कि हमारे पास उपाय है, चिंता न करो, वो शनि के 7.5 को भी उतारने का हमारे पास उपाय है। क्या करना होगा, तो बोले बस शनि महामृत्युंजय का जप करो, शनि मृत्युंजय का जप करो, शनि का अनुष्ठान करना पड़ेगा। काला कपड़ा होगा, लोहे का बर्तन होगा, सरसों का तेल लाना पड़ेगा, काली दाल काली है, ये सब होगा, काला कपड़ा होगा, ये सब करोगे, हम अनुष्ठान करेंगे। वेद में उस शनि को हटाने का एक मंत्र है, सन्नो देवी रविष्टय आपो भवंतु पीतये संयो रवि स्रवंतु नाह, इसका 1,00,000-1,25,000 जप कर दोगे तो शनि अपने आप भाग जाएगा। हाँ, ये गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये सही है अपनी जगह पर, शनि को भगाने का सही उपाय है ये। इसी तरह उसने कहां से कहीं कुछ वेद का मंत्र कहीं फैला उसको मिल गया, तो कहने लगा शनि जब भाग सकता है तो ये सर्प क्यों नहीं भागेगा। बस वहीं बैठकर सन्नो सन्नो देवी रविष्टया खूब जोर जोर से मंत्र का अनुष्ठान करने लग गया, वेद के मंत्र को अनुष्ठान करने लगा। तो जाएगा कि नहीं वो सर्प है? जोर जोर से अनुष्ठान करेगा तो जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। अब फिर गांव के पंडितों को बुलाया, बाहर हवन करने लग गया, किम ऋचया करिष्यति, ऋग्वेद क्या कर लेगा भाई, यजुर्वेद क्या कर लेगा, सामवेद क्या कर लेगा, अथर्ववेद क्या कर लेगा। किसी एक व्यक्ति पंडित जी थे, काशी में जाकर वेद पढ़ के आए, वेद पढ़ते समय उन्होंने ये वाक्य पढ़ ली, ये वेद महान ग्रंथ है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ये वेद को कोई ठीक से पढ़ लेगा, वेद जो है वह सब जीवात्मा को संसार सागर से तारने वाला है, यही है जीव को इस संसार सागर से तारने वाला शास्त्र, यही है, किसी ने कह दिया। पंडित जी को बड़ा विश्वास हो गया, तो वेद की पुस्तक, चारों वेदों की पुस्तक खरीद लेके आ गए, गठड़ी बनाकर लेके आए। तो अपने गांव जा रहे थे, तो नदी के गांव के बीच में एक नदी था, नदी पार करके जाना था, उसमें अचानक नदी में बाढ़ आ गया, तो पुल तो था नहीं, वहां नाव भी नहीं थी, तो उनको विश्वास हो गया कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि ये वेद संसार सागर को तारने वाला है। तो उन्होंने सब पुस्तक को अपने पीठ में बांध ली, उनको विश्वास हो गया इतना बड़ा संसार सागर को तारने वाला है तो ये छोटी सी नदी को क्यों नहीं तारेगा। पीठ में उस वेद को बांध लिया और नदी में कूद पड़े तो वो तर जाएंगे कि नहीं, बोलो। किम ऋचया करिष्यति, यही है ये, इस श्रुति ने यही बात कहा है। उस आत्मा को नहीं जानोगे तो ये वेद के ऋचाएं, वेद के मंत्र, ये सब उसको क्या कर पाएंगे। ये कौन कौन कह रहा है? खुद वेद के मंत्र कह, हम तुम्हारे क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि तुमने उस ऋतु अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु, उसको जानते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि तुम उसको नहीं जानते हो तो उन वेद, उन वेदों के जो मंत्र ऋचाएं, अर्थात हम, जैसे कि शाम के वेद स्तुति प्रसंग चल रहा है, ये सब ऋचाएं कहती हैं कि हम क्या कर लें, कैसे बचाएंगे आपको। जब तक ये रस्सी है ये नहीं जानेगा, वो व्यक्ति अपने कर्म कमरे में पड़ा हुआ सर्प को मानकर वो परेशान हो रहा है, कभी पत्थर मार रहा है, कभी डंडे मार रहा है, कभी अनुष्ठान कर रहा है, कभी गरुड़ का नाम ले रहा है, कभी स्वाहा सुदा कर रहा है। उसने विचार किया ये कब तक यहां रहेगा, दो चार दिन, एक डेढ़ पंद्रह दिन बैठ जाएगा यहां, जब तक चूहे आदि मिल जाएंगे यहीं बैठ के खाएगा, जब सब खत्म हो जाएंगे तो निकल के जाएगा अपने आप। तब तक तीर्थ यात्रा करते हैं, चलो चार धाम यात्रा, चला गया दरवाजा बंद करके चार धाम यात्रा, और सारे चार धाम यात्रा करके जब लौटा तो लौटते समय जब ताला खोला तो शाम का समय था, ताला खोला तो फिर वो सरपंच जी उनका त्यों वहीं था, शाम के समय में खोला दरवाजा वहीं था। अरे सारे तीर्थ यात्रा कर ली फिर भी ये नहीं जा रहा है, दान कर ली, व्रत कर ली, तपस्या कर ली, फिर भी ये नहीं जाता, ये सर्प कैसा सर्प है, बहुत परेशान हो गया। तब एक महात्मा आ गए, महात्मा ने पूछ लिया, अरे क्या हुआ बेटा? बोले महाराज देख लो, छह महीना हो गया, ये सर्प ने तीर्थ यात्रा भी कर लिया, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी कर ली, जप तप भी कर लिया, फिर भी हमने इतने कितने पत्थर मारी इसको, कितने लकड़ी मारी इसको, और हमने सुना कि गरुड़ के साथ इसका दुश्मनी, गरुड़ को भी बुलाया, गरुड़ भी क्या उस सर्प को ले जाएगा? है? ले जाएगा गरुड़, साक्षात गरुड़ ही आ जाए, भगवान नारायण यदि भेज दे गरुड़ को कि मेरा भक्त बेचारा संकट में पड़ा हुआ है, हे गरुड़ जा तू उस सर्प को खा के अपने चोंच से पकड़ के लेके आ जा, मेरे भक्त का उद्धार कर दे, तब गरुड़ नारायण के द्वारा भेजे हुए उस गरुड़ के द्वारा वो सर्प खत्म हो जाएगा, वो गरुड़ ले जाएगा उस सर्प को। तब महात्मा ने विचार किया कि अरे भाई जिस तरह ये सर्पनाश हो सकता है उसका तू उपाय नहीं कर रहा है, जब तक वो उपाय नहीं करेगा बाकी उपाय तुम्हारे लिए कुछ काम आने वाले नहीं है। बोले क्या है महाराज उपाय? बोले कहां है सर्प जरा मुझे दिखाओ। वो सामने देख लो, दिखाई पड़ रहा है। संयोग से महात्मा के पास टॉर्च था, जरा मैं अच्छी तरह देखता हूं किस जाति का है, टॉर्च जलाया, टॉर्च जलाते ही वहां तो रस्सी है, उसको कहा कि कहां है सर्प देख ले, ये क्या है? रस्सी है। अरे मैंने काम किया था वो टुकड़ा यहां रह गया था, वही मुझे आज तक परेशान करता रहा। जब तक रस्सी के स्वरूप को नहीं जानोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं, अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए कहा है यस्तम न वेद, जो उस अक्षर परम व्योम को नहीं जानता है किम ऋचा करिष्यति, उसको वेद के मंत्र भी कुछ नहीं करें, गंगा जी का जल भी कुछ नहीं कर पाएगा, है शालिग्राम का जल भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम तो ये मानते हैं कि मरणासन्न में अवस्था में मुख में थोड़ा गंगा जी का जल डाल दो, तुलसी का पत्ता डाल दो, थोड़े दो चम्मच पानी डाल दो। जब उसने उस तत्व को जाना ही नहीं, तुलसी इतनी पवित्र हुई है किसके कारण उस तत्व को नहीं जाना, तो तुलसी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। गंगा का जल पवित्र है तो जिसके वजह से गंगा का जल पवित्र है किसके वजह से गंगा का जल पवित्र है, तो गंगा के जल को पवित्र बनाने वाला उस तत्व को नहीं जानोगे तो खाली गंगा के जल तुमको मुक्त नहीं कर पाएंगे। या इत्तद विदुष्टा इमे समासते, जो इस तत्व को जानता है वह फिर मुक्त हो जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।